તારીખ 28/12/1998 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 450 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 795
પદ હેડિંગ મેં દિયા હૈ જીવનું સિદ્ધ સૂચના કરે કૃષ્ણને કરવું હોય તો કરે ચિત્ત તું સિદ્ધ સૂચના ધરે કૃષ્ણને કરવું હોય તો કરે એક લૌકિક પદ મેં ભી ઇતના જો ઈશ્વર કર્તૃત્વ મેં લોગ હૈ ઉનકો સમાધાન દેતે હૈ કે ભાઈ જો ભગવાન કો કરના હોગા વહી કરેગા વો કરેગા યોગ્ય હી હોગા તુમ ક્યો ચિંતા કરતે હો તુમ્હારે ચિત્ત મેં ઇતની ચિંતા ક્યો તુમ્હારી જીવ મેં ઇતની ચિંતા ક્યો એસા કહે કરકે સુભાગભાઈ કો જો ઉસકી માન્યતા મેં થોડે બહોત થે ઉનકો ચિંતા સે હટાતે હૈં જબકે ચિંતા કો મંદ કરને કા એક ટેમ્પરરી બાત હૈ કોઈ વસ્તુ કા સ્વરૂપ નહીં હૈ કૃષ્ણ મેને કોઈ ઈશ્વર કરતુ ઈશ્વર ને કૃષ્ણ મેને જો હોને વાલા હૈ હોનહાર હૈ કુદરત કા વહી હોયગા તુમ ક્યા ચિંતા કરોગે ચિંતા કરને સે ક્યા ફાયદા और ये होनहार किसी और ने नहीं किया है हमारे में जो अनंत ऐश्वर्य है ऐसा हम जो जीव है जिसमें अनंत ऐश्वर्य उसने ही सभी होनहार खड़ा किया है हमारा होनहार कोई दूसरा नहीं करता जो भी आने वाले प्रारब्ध है में संयोग योग कुछ भी होने वाला है वो सब हमारा किया हुआ है फिर इसकी चिंता क्यों हमारे अपराध का फल हम अपराध तो करें और फल भोगने में हम तैयार नहीं हो ये बात तो प्रामाणिकता की नहीं है ये तो बात ऐसी हो गई कि हमको कर्ज लेना है लोन लेनी है चुकाना नहीं है ईमानदारी में ये बात नहीं हो सकती हमको ब्याज समेत चुकाना है इतनी बात नहीं है ब्याज समेत चुकाना इतनी हमारी ईमानदारी फिर इसमें चिंता क्यों इस बात की फिर इस बात की चिंता क्यों कि कर्ज लिया फिर चुकाना पड़ेगा तो फिर लिया क्या और लिया तो चुकाना ही है खानदानी से चुकाना है कोई चिंता का विषय है ही नहीं जगत में जगत में कोई चिंता का विषय है ही नहीं इस काल में प्रतिकूलता का आना ये तिरने का साधन बनता है अगर योग्यता होती है तो इसलिए प्रतिकूलता तो जरूरी है हम लोगों के लिए अगर नहीं आती है तो लानी चाहिए प्रयोग करके तभी हम कहाँ खड़े हैं हमारे परिणाम कैसे हैं हमारी योग्यता कैसी वो पता चलेगा हमको पूर्व काल में इस पत्र में कृपालु देव ने अपना सम्यक दृष्टिकोण घोषित किया है यहाँ तक तो पहुंचेंगे नहीं आज के साध्य में अगर देखना है तो अगले पेज पे देख लो लास्ट बचपन आगे से पहला पैराग्राफ हमें मार्गानुसारिता कहना संभव नहीं है अज्ञान योग्यता तो जब से इस देह का धारण किया तभी से ही नहीं होगी ऐसा लगता है। अज्ञान योगी नहीं है, मार्गानुसारी भी नहीं है। सम्यक दृष्टिपन तो जरूर संभव है, सम्यक दृष्टिपन जरूर है, किसी प्रकार का सिद्धि योग साधने का हमने कभी भी सारी जिंदगी में अल्प भी विचार किया हो ऐसा याद नहीं आता। चमत्कार की दिशा में हम तो कभी विचार भी नहीं किया। अर्थात साधन से वैसा योग प्रकट हुआ हो, अर्थात साधन से वैसा योग प्रकट हुआ हो ऐसा नहीं लगता। ऐसा कोई प्रयोग करके ऐसा सिद्धि के चमत्कार का प्रकट नहीं किया। आत्मा की विशुद्धता के कारण यदि कोई वैसा ऐश्वर्य हो हमारे में तो उसकी असत्ता नहीं कही जाती, यानी सत्ता है। आत्मा की विशुद्धि से ऐसा ऐश्वर्य की कुछ सत्ता हमारे में है, वह ऐश्वर्य कुछ अंश में संभव है। तथापि यह पत्र लिखते समय इस ईश्वर की स्मृति हुई है। इसके पहले तो कभी हमने ये सिद्धि की स्मृति भी नहीं की है, नहीं तो बहुत काल से वैसा होना स्मरण में नहीं है। तो फिर उसे स्फुरित करने की इच्छा कभी हुई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसका प्रयोग हमने कभी नहीं किया है, ये स्पष्ट बात है। तो अब कुछ बाह्य परिस्थिति में चमत्कार की बात को तो महत्व देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम उदय में जो प्रारब्ध के अनुसार जो प्रतिकूलता और दुख आई उसको मिटाने की हमारी चेष्टा है, और वो अनुचित चेष्टा है। आप और हम कुछ दुखी नहीं हैं, जो प्रतिकूलता हम लोगों के वो तो कुछ है ही नहीं। जो दुख है वो राम के 14 वर्ष के दुख का एक दिन भी नहीं है, पांडवों के 13 वर्ष के दुख की एक घड़ी भी नहीं है, और गत सुकुमार के ध्यान का एक पल भी नहीं है। तो फिर हम यह अत्यंत कारण कभी भी बताना योग्य नहीं है, हमें यह अत्यंत कारण कभी भी बताना योग्य नहीं है कि हमको ये प्रतिकूलता है, हमको ये प्रतिकूलता है, हमको ये प्रतिकूलता है, ये नहीं बताना चाहिए। आप जो भी आया है इसका स्वागत करो अच्छी तरह से, जो भी प्रतिकूलता आई है इसका योग्य रूप से अच्छी तरह से उसका स्वीकार करो, उसका सत्कार करो, स्वागत करो, और उसी को तैरने का एक प्रयोग साधन बना लो। तो ये उपकारक हो जाएगी, ये प्रतिकूलता उपकारक हो जाएगी, वरना नया कर्म मन बहुत तीव्र हो जाएगा, जो हुआ है इससे भी ज्यादा हो जाएगा, जो आज बर्दाश्त नहीं कर सकते आगे कहाँ से बर्दाश्त करोगे, ये बात हो जाएगी। इसमें उन्होंने दो बात का की स्वीकृति की है कि सम्यक दृष्टिपना हमारे में संभव है, और आत्मों की विशुद्धता के कारण, आत्मा की विशुद्धता के कारण किसी न किसी प्रकार का कोई बाह्य ऐश्वर्य जिसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं वो कुछ है, लेकिन हम उस पर उसकी तुल देते नहीं है, इसका पर हमारा कोई तुल नहीं, कोई वजन नहीं है, हम स्मरण भी नहीं करते, और कभी अभी स्मरण किया नहीं, कोई इसका प्रयोग भी किया नहीं, पर हम करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि हमारा दुख तो कुछ है ही नहीं। ये तीन महात्माओं के आगे हमारा दुख तो कुछ ही नहीं है। रामचंद्र जी मोक्ष में गए, पांडव में भी तीन मोक्ष में गए, गच्छ कुमार भी मोक्ष में गए। जब ये मोक्ष में गए इतनी प्रतिकूलता वाले हैं, तो हम तो कम प्रतिकूलता वाले हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। मतलब ये हुआ कि मोक्ष जाने के लिए कोई प्रतिकूलता आड़े नहीं आती, ये बात साफ हो गई। और हम तो मोक्ष जाने का प्रयास में लगे हुए हैं, हमें प्रतिकूलता का क्या डर है, ये कुछ होना ही नहीं। उसको कहते हैं पुरुषार्थ, उसको कहते हैं पौरुष। डरते कौन है, बच्चे लोग डरते हैं, महिलाएं डरती हैं, पुरुष डरते हैं कभी क्या? और डरते हैं वो पुरुष नहीं है। रोना काम किसका है? बच्चों का है, हाँ, औरतों का है। पुरुष का काम रोने का होता है क्या? ऐसी प्रतिकूलता आ गई, ऐसी प्रतिकूलता आ गई, ऐसी प्रतिकूलता। ठीक है, मर्दों का नहीं होता कभी। पूर्व काल में जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं भूतकाल में, उन ज्ञानियों में बहुत से ज्ञानी पुरुष सिद्धि योग वाले हुए हैं, बहुतों को हुए हैं। आत्मा की विशुद्धि के कारण सिद्धि रिद्धि तो इसके चरण में लौटती है, ज्ञानी के चरण में तो वो लौटती है, वो सामने भी नहीं देखते, वो कोई खास चीज नहीं है। ऐसा जो लोक कथन है वह सच्चा है या झूठा, ऐसा आपका प्रश्न है। लोग ऐसे कहते हैं कि ज्ञानियों के पास रिद्धि सिद्धि होती है, तो क्या ये लोग सही बात करते हैं या कोई गपशप चलती है क्या? मैंने, आप भी तो ज्ञानी हैं, आपके पास भी कुछ होना चाहिए, कहने का आशय तो वो था, इसलिए पीछे लिखा। ये क्या पूछते हो आप, ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो? आपको क्या दुख है? रामचंद्र जी का दुख देखो, पांडवों का देखो, इसका देखो, इसमें इसको क्यों याद करते हो? रिद्धि सिद्धि को प्रतिकूलता दूर करने में इसका उपयोग करना है क्या? ये तो मरने का धंधा है, वो जीने की बात नहीं है, वो तो हार गए आप। और यह सच्चा होना संभव है ऐसा आपका अभिप्राय है? ऐसा तो होना चाहिए, ज्ञानी के पास नहीं हो तो किसी के पास हो गया वो। साक्षात देखने में नहीं आता, यह विचार रूप जिज्ञासा है। तो सच्चा है ऐसा लगता है, फिर किसी ज्ञानी में दिखने में क्यों नहीं आता है? ये प्रश्न खड़ा हुआ है प्रभाग भाई को। कितने ही मार्गानुसारी पुरुषों और अज्ञान योगी पुरुषों में भी सिद्धि योग होता है, मार्गानुसारियों को भी होता है, वो इनकी सरलता के कारण से होता है। और अज्ञान योगियों तो जो मैली विद्या करते हैं, बहुत से असंख्य प्रकार की है, वो भी साधना करते हैं, उनको भी सिद्धि सिद्धि होती है। हो सकता है प्राय उनके चित्त की अत्यंत सरलता से, किसके मार्गानुसार कोई जीव होते हैं, इनकी अत्यंत सरलता से ये सिद्धि योग की स्फुरणा हो सकती है, अथवा सिद्धि योगादि का अज्ञानी योग से स्फुरणा देने से, यानी इस प्रकार की साधना करने से भी वह प्रवृत्त करता है, सिद्धि योग प्रवृत्त करता है, हो सकता है, दो प्रकार से होता है। सम्यक दृष्टि पुरुष के जिनका चौथे गुण स्थान में होना संभव है, वैसे ज्ञानी पुरुषों में क्वचित सिद्धि होती है और क्वचित सिद्धि नहीं भी होती। सबको होना जरूरी नहीं है, किसी को होती है, किसी को नहीं भी होती है, कोई जरूरी नहीं है। जिनमें होती है उन्हें उसकी स्फूर्णा की प्राय इच्छा नहीं होती, होती है वो इसका प्रयोग नहीं करते, उसका तुल नहीं देते ना बिल्कुल। और बहुत करके यह इच्छा तब होती है कि जब जीव प्रमादवश होता है, यानी पुरुषार्थ की शिथिलता में आ जाता है, प्रमाद मैंने शिथिलता, इसको ही प्रमाद कहते हैं। और यदि ऐसी इच्छा हुई तो उसका सम्यक से पतन होना संभव है। इतनी शिथिलता में आ गया कि प्रतिकूलता को वो सहन नहीं करता है, और जो सिद्धि योग आया है इसका प्रयोग करने लग जाएगा, सम्यक दर्शन से च्युत हो जाएगा। क्यों? कि सम्यक दर्शन का अवलंबन तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, साक्षात परमात्म तत्व, इसका अवलंबन छोड़ करके प्रतिकूलता का अवलंबन आ गया, सम्यक तो कहाँ से टिकेगा, तो पतन हो ही जाएगा, सम्यक तो छूट जाएगा। इसलिए ज्ञानी कभी प्रतिकूलता को दूर हटाने के लिए सिद्धि का प्रयोग नहीं करते। प्रायः पांचवें छठे गुण स्थान में भी उत्तरोत्तर सिद्धि योग का विशेष संभव हो जाता है, क्योंकि वहां तो आत्मा की शुद्धि बढ़ जाती है, तुम्हारी युद्धि सिद्धियां आने लगती है। मुनियों को तो बहुत होती है। और यहां भी यदि जीव प्रमाद आदि योग से सिद्धि में प्रवृत्ति करे तो प्रथम गुण स्थान में स्थित होना संभव है, सीधा ही प्रथम गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में आ जाएगा। इसलिए वो कोई साध, कोई मोक्ष मार्गी है वो सिद्धि का प्रयोग नहीं करते, ये सिद्धि को तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। जीव के अनंत ऐश्वर्य के आगे पुद्गल परमाणु की कीमत कितनी है, बस कि उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। रजकण के रिद्धि वैमानिक देव ने सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव, तो कुछ नहीं लगता, उसका कोई मूल्य नहीं है जगत में। ना, आकुलता होती है, आकुलता संयोग के प्रति परिणाम का खिंचाव में आकुलता नहीं हो ऐसा बन ही नहीं सकता, और वशाता में आकुलता होती है। बात होती है कीच को कन को जागे मिर्च को मिठाई, लिया है ना बनासी दास जी ने, गरीबाई जैसे गारसी। सातवें आठवें और नौवें गुण स्थान में प्राय प्रमाद का अवकाश कम है, बहुत तीव्र पुरुषार्थ की दशा है, क्योंकि श्रेणी पुरुषार्थ की श्रेणी उत्तरोत्तर बढ़ती है। ग्यारहवें गुण स्थान में सिद्धि योग का लोभ संभव होने के कारण वहां से प्रथम गुण स्थान में स्थिति होना संभव है, ग्यारहवें वाला का पतन हो जाता है, यही कारण है सिद्धि योग का लोभ। बाकी जितने सम्यक्त्व के स्थानक है और जहां तक सम्यक्त्व परिणामी आत्मा है वहां तक उस एक भी योग में जीव की प्रवृत्ति त्रिकाल में भी होना संभव नहीं है। कोई सम्यक दृष्टि सिद्धि योग की प्रवृत्ति नहीं करते। चमत्कार का कोई महत्व है ही नहीं इस मार्ग में, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा का ऐश्वर्य की तुलना है इसमें कि आत्मा का ऐश्वर्य क्या चीज होती है, इसके आगे ये चमत्कार का ऐश्वर्य कुछ नहीं है। सीधी बात करें तो ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट है कि जिस पामर प्राणी को अध्यात्म विद्या के कारण से, आत्म विद्या के कारण से तीन लोक का नाथ सिद्धपद की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा चमत्कार इस जगत में कौन सा हो सकता है? क्या कोई हो सकता है? क्या तो हो ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ा चमत्कार है और वही चैतन्य का चमत्कार है। बाकी सब जड़ के चमत्कार है। ये चैतन्य का जीवंत चमत्कार है और बाकी सब जड़ के मुर्दे का चमत्कार है। कहाँ जीवन कहाँ मुर्दा, कहाँ जीवंत कहाँ मुर्दा, इतना बड़ा अंतर है। कोई मुर्दा के सामने आसक्ति से देखेगा क्या? जब पता चला कि ये मुर्दा हो गया है, उसमें जीवन नहीं है, तो कौन सी आसक्ति रहेगी बताइए? ऐसे ज्ञानी अपने चैतन्य के जीवन को देखते हैं, रिद्धि सिद्धि योग के मुर्दे को नहीं देखते। इतना बड़ा अंतर है। ये बात कंपैरेटिवली ऐसी ही है, इसलिए वो कोई सामने, क्योंकि पता है कि मुर्दा है, अभी उसमें दुर्गंध चालू हो जाएगी, ये थोड़ी देर में तो उसमें दुर्गंध चालू हो जाएगी, इसलिए तो रखते नहीं लोग। कितना भी प्रियजन का शरीर हो, जलाओ जल्दी, जलाओ जल्दी, जल्दी करो जल्दी, ये बात हो जाएगी। ऐसा रिद्धि सिद्धि योग देखता है ज्ञानियों, क्योंकि उसने अपना ऐश्वर्य को देखा है। अपने अनंत ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष करते हैं, अब इसकी इतनी महत्ता है, इसका महत्व इतना है, इतनी महिमा है। सम्यक ज्ञानी पुरुषों से लोगों ने सिद्धि योग के जो चमत्कार जाने हैं, वे सब ज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए नहीं हो सकते। वे सिद्धि योग स्वभावतः परिणाम को प्राप्त हुए होते हैं। कोई बात बन गई अलग अलग बात है, करते नहीं। जैसे सुदर्शन सेठ की बात है, सुली का सिंहासन हो गया, वो सुदर्शन सेठ ने कुछ नहीं किया, ये इनके पुण्य के स्वभाव के, पुण्य योग के स्वभाव से हो गया, किया नहीं था। तो ऐसा कहीं भी बनता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि देखो ज्ञानी ने ये चमत्कार किया, नहीं ज्ञानी ने नहीं किया है, ऐसा बात करते हैं। कि सम्यक ज्ञानी पुरुषों से लोगों ने सिद्धि योग का जो चमत्कार जाने हैं, प्रसिद्ध है, शास्त्रों में बात आती है, वे सब ज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए नहीं हो सकते। वे सिद्धि योग स्वभावतः परिणाम को प्राप्त होते हैं, हुए होते हैं स्वभावतः। उस वक्त ऐसा ही द्रव क्षेत्र काल भाव का स्वभाव था। दूसरे किसी कारण से ज्ञानी पुरुष में वह योग नहीं कहा जाता, इनकी इच्छा नहीं होती, इसके आकांक्षा नहीं होती, ये तो दीनता हो गई, प्रतिकूलता मिटाने में दीनता में आ गए। तो मुमुक्षु के लिए दीनता की मना है तो ज्ञानी की तो सवाल ही कहाँ रहती है। मुमुक्षु भी अगर दीनता में आता है तो इसका आत्महित नहीं होता है। मुमुक्षु को भी दीनता में नहीं आता और आता है वो मुमुक्षुता में नहीं आता। ज्ञान दशा तो बहुत आगे की चीज है। मार्गानुसारी अथवा सम्यक दृष्टि पुरुषों के अत्यंत सरल परिणाम से उनके वचन अनुसार कितनी ही बार होता है, जिसको वचन सिद्धि कहने में आता है। इसके मुंह से कोई बात निकल जाती है और वैसी बन जाती है। लोग कहते हैं कि इसके पास वचन सिद्धि योग है, लेकिन ये तो इनके अत्यंत सरल परिणाम से ये बात कभी बन जाती है। जिसका योग अज्ञान पूर्वक है, उसके उस आवरण के उदय होने पर अज्ञान का स्फुरण होकर वह सिद्धि योग अल्पकाल में फलित होता है। ये मैली विद्या है। क्या? जिसका योग अज्ञान पूर्वक है, योग मैंने योग साधना अज्ञान पूर्वक है, ऐसे बहुत सी है असंख्य प्रकार की। अभी तो ये जमाना नहीं रहा, लेकिन जो विद्याधर का जमाना था, रामचंद्र जी के काल में था, बहुत से विद्याधर थे। रामचंद्र जी, हनुमान जी विद्याधर थे, वो रावण भी विद्याधर थे। रावण को तो यही तो अहंकार था कि हम तो विद्याधर है, आकाशगामिनी विद्या है हमारे पास, ये तो भूचर है, रामचंद्र जी तो जमीन पर चलने वाले हैं, इसके पास तो ऐसी कोई विद्या तो है ही नहीं, हम तो ऊपर से मार डालेंगे इसको, ऊपर से अटैक करेंगे इसके पर, ये तो जमीन पर रहने वाले हैं, कोई आकाशगामिनी विद्या तो नहीं है उसके पास। लेकिन फिर भी वो मरा है, जिंदा नहीं रहा, वो रामचंद्र जी के बाण से, धनुष बाण से वही मर गया। तो ये तो एक मैली विद्या ऐसे असंख्य प्रकार की थी और अज्ञान योग से उसको स्फुरित करते थे लोग। लेकिन उसके उस आवरण के उदय होने पर अज्ञान का स्फुरण होकर वह सिद्धि योग अल्पकाल में फलित होता है। कुछ आवरण को ऐसे हटाते हैं, वैसे कोई तपस्या वगैरह करके करते हैं। नानी पुरुष से तो मात्र स्वाभाविक स्फुरित होकर ही फलित होता है, अन्य प्रकार से नहीं। उनको तो विद्या का आधार है, इच्छा भी है और उसका फल भी अच्छा नहीं है, बहुत अधोगति में जाते हैं। ज्ञानी को तो सहज स्फुरण कोई हो जाती है, कोई वचन निकल जाता है, कोई बात बन जाती है तो बन जाती है, वो चाहते नहीं है कभी। जिन ज्ञानी से सिद्धि योग का स्वाभाविक परिणाम परिणामी होता है, वे ज्ञानी पुरुष हम जो करते हैं वैसा और वह इत्यादि दूसरे अनेक प्रकार से चारित्र के प्रतिबंधक कारणों से मुक्त होते हैं, कि जिस कारण से आत्मा का ऐश्वर्य विशेष पूरित होकर मनादि योग में सिद्धि के स्वाभाविक परिणाम को प्राप्त होता है। तो क्या है कि पहले तो अपने आप को हटा लिया, जिसको ज्ञान जो ज्ञानी है उसको सिद्धि योग होता है, वो हमारे जैसे नहीं होता है। हम तो देखो ना, बिजनेस में लगे हुए हैं, गृहस्थी में लगे हुए हैं, हमारे में सिद्धि योग कहाँ से होगा? ऐसे ही बात को दूसरे रास्ते पे ले जाते हैं। बहुत जो बाह्य में विशुद्धि वाले हुए, अंतर बाह्य विशुद्धि वाले को सिद्धि योग हो सकता है, लेकिन हमारी तो ऐसी कोई योग्यता है ही नहीं। आप प्रत्यक्ष देखते हो, कि हमारी प्रवृत्ति कैसी चल रही है। चारित्र के प्रतिबंधक कारणों, क्या हम जैसे करते हैं वैसे दूसरे अनेक प्रकार के चारित्र के प्रतिबंधक कारणों, चारित्र के प्रतिबंधक है, गृहस्थी है, व्यापार है, उन कारणों से मुक्त होते हैं। जिसके पास रिद्धि शुद्धि होती है उस कारणों से बहुत तपश्चर्या भी उनकी होती है, भले गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थान हो, बहुत तपश्चर्या वाले होते हैं कि जिस कारण से आत्मा का ऐश्वर्य विशेष स्फुरित होकर के मनादि योग में सिद्धि के स्वाभाविक परिणाम को प्राप्त होते हैं। इनके विकल्प होते हैं और काम बन जाता है, ऐसा बनता है। क्वचित ऐसा भी जानते हैं कि किसी प्रसंग में ज्ञानी पुरुष ने भी सिद्धि योग परिणमित किया होता है, तथापि वह कारण अत्यंत बलवान होता है। कभी ज्ञानी का प्रयोग करने का होता है तो बहुत बलवान कारण, जैसे कोई शासन का बचाने का होता है, होते हैं तो उस वक्त नुकसान होता है, तो फिर उसको उस नुकसान को वाइप ऑफ करने का आत्मसात भी आ जाता है, हो जाता है। इतनी तैयारी के साथ ये प्रयोग होता है। तो मालूम है अभी हमको हमारी गाड़ी पीछे लेनी पड़ेगी, लेकिन ट्रैफिक क्लियर होने से डबल गति से जाएंगे, फिर अभी थोड़ा बैक करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा बलवान कारण से ऐसा कोई कर भी लेते हैं ज्ञानी, और वह भी संपूर्ण ज्ञान दशा का कार्य नहीं है, वो भी छद्मस्त का कार्य है। केवल ज्ञानी तो कोई ऐसे लफड़े में पड़ते हैं, जिसकी अरिहंत अवस्था हो तो वो किसी को बताते नहीं, बात खत्म हो गई। चाहे किसी का भी कुछ हो जाए, उनको विकल्प नहीं उठेगा। हमने जो ये लिखा है वो बहुत विचार करने से समझ में आएगा, आप विचार करिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर बाद में उन्होंने अपने सम्यक दृष्टि पने की और अपने सिद्धि योग की स्वीकृति दे दी है, लेकिन उसका प्रयोग करने की तो मनाही कर दी है। यहाँ तक।